हम सफर न्यूज रूम से मैं अंबिका, पेश हैं समाचार। आज दिन सोमवार, तारीख 12 मई 2025। उत्तर पूर्वी न्यूयॉर्क राज्य में लापता बताए गए क्यूबेक हाइकर का शव मिल चुका है। राज्य के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की। न्यूयॉर्क राज्य पर्यावरण संरक्षण विभाग DEC ने एक बयान में कहा है कि 22 वर्षीय किशोर लियो डुफोर का शव एसेक्स काउंटी में एलन माउंटेन ट्रेल के पास वीकेंड में मिला था। अधिकारियों का कहना है कि हाइकिंग पार्टी ने शनिवार सुबह शव मिलने की सूचना दी। वन रेंजर्स एक DEC जांचकर्ता और न्यूयॉर्क राज्य पुलिस ने स्थान का पता लगाया और अधिकारियों ने रविवार को पुष्टि की कि शव डुफोर का है, जो 30 नवंबर को योजना के अनुसार एक दिवसीय हाइक से वापस नहीं लौटे थे। पिछले दिसंबर में डुफोर के लिए एक बहु एजेंसी खोज की घोषणा की गई थी और उन्हें एडिरोंडैक बैक कंट्री में बर्फ के पिघलने के बाद इस वसंत को फिर से शुरू करने से पहले कई हफ्तों तक इनकी तलाश की गई थी। बर्फ से ढके एडिरोंडैक में क्यूबेक हाइकर की खोज फिर से शुरू हुई और अधिकारियों ने बताया कि डुफोर की कार एक ट्रेल हेड पर बर्फ से ढकी हुई पाई गई थी, लेकिन हाल ही में हुई बर्फबारी के कारण उसका पता लगाना मुश्किल था। मॉन्ट्रियल के पश्चिम में वॉड्रॉय के निवासी डुफोर 29 नवंबर 2024 को न्यूकॉम शहर में एलन माउंटेन पर चढ़ाई करने के लिए अमेरिका गए थे। DEC ने डुफोर के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और पिछले कुछ महीनों में रेंजर्स के अथक प्रयास की भी सराहना की। डाइवर्सिटी और फैशन रिटेल ब्रांड ले शैडो के संस्थापक हर्ष सीगल का निधन हो गया है। इसके अलावा वे डेविड स्टी के भी संस्थापक थे। डेविड स्टी कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में किरानों की दुकानों के साथ साथ सुविधा स्टोरों में ऑनलाइन चाय भी बेचती है। कंपनी के कनाडा में 20 स्टोर भी हैं। मॉन्ट्रियल स्थित कंपनी ने शनिवार को एक समाचार विज्ञप्ति में सीगल की मृत्यु की घोषणा की। इसमें कहा गया कि उनका निधन मंगलवार को हुआ। सीगल 2021 में डेविड स्टी के निदेशक मंडल से सेवानिवृत्त हुए थे। उनकी पत्नी इस वक्त इस समय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और उनकी बेटी सारा सेगल कंपनी की वेबसाइट पर निदेशक के साथ साथ मुख्य कार्यकारी और मुख्य ब्रांड अधिकारी के रूप में सूचीबद्ध हैं। हर्शल ने 1950 के दशक के अंत में ले शैटो लॉन्च किया था। कपड़ों का यह ब्रांड यंग कंज्यूमर्स के बीच एक बड़ी सफलता थी और 1980 और 1990 के दशक में शॉपिंग मॉल में एक प्रमुख ब्रांड था। इससे पहले कि H&M और जारा जैसी कंपनियां कनाडा के बाजार में प्रवेश करती, ले शैटो ने 2020 में लेनदार सुरक्षण के लिए अनुरोध किया था और इसके स्टोर अंततः समाप्त कर दिए गए। डेविड स्टी की शनिवार की समाचार विज्ञप्ति में बताया गया कि सीगल ने हमेशा अपनी कंपनियों का नेतृत्व दूरदृष्टि दृढ़ संकल्प के साथ किया। इस बीच स्क्विश की CEO सारा सीगल ने डेविड स्टी के प्रमुख के रूप में पिता से अपना पदभार संभाला। उन्होंने विज्ञप्ति में कहा कि सीगल का निवेश कंपनी और डेविड स्टी की सबसे बड़ी शेयरधारक रेनिडे इन्वेस्टमेंट इस समय लंबे समय तक इसके शेयर होल्डर बने रहेंगे। शनिवार दोपहर को पेड़ की टहनी गिरने से सर पर चोट लगने के बाद 76 वर्षीय महिला गंभीर हालात में अस्पताल में भर्ती कराई गई हैं। मॉन्ट्रियल आइलैंड के उपनगर कोट सेंट ल्यूक में दोपहर में ये घटना अर्जांस सांते पैरामेडिक्स ने कॉल का जवाब देने के वक्त बताया। प्रवक्ता ने कहा कि ये मैकडॉनल्ड एवेन्यू के कोने पर क्वीन मेरी रोड पर हुआ, जब वे बस का इंतजार कर रही थीं। उनके अनुसार महिला के सिर में गंभीर चोट लगी और उन्हें गंभीर हालात में अस्पताल ले जाया गया। मॉन्ट्रियल जनता की सुरक्षा के लिए ला फॉन्टेन पार्क में बड़े पेड़ों को काटने के लिए तैयार है, जबकि पुलिस का कहना है कि ये घटना किसी आपराधिक प्रवृत्ति की नहीं लगती है, लेकिन अधिकारी कोरोनर की जांच की स्थिति में सहायता के लिए घटनास्थल पर मौजूद रहे। पड़ोस में रहने वाली इंग्लॉफ ने कहा कि उन्हें अपनी गली में पेड़ों के नीचे चलने से काफ़ी चिंता होती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पदभार ग्रहण करने के बाद समाजशास्त्री ट्रेवर्स ने कहा कि NASS समारोह में उन्होंने भाग लेने की अपनी योजना को रद्द कर दिया है। इस बीच वे एक ऐसे ट्रांस व्यक्ति के रूप में ऐसे समय में अमेरिका में जाने से सावधान हैं जब ट्रंप प्रशासन ट्रांसजेंडर अधिकारों को वापस ले रहे हैं। उनके अनुसार वे अभी US की यात्रा नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करना बहुत खतरनाक होगा। NASS के 600 सदस्यों में से लगभग 40% कनाडा में रहते हैं और उनमें से कई ने बताया कि वे अमेरिकी सीमा पर बढ़ती जांच, ट्रंप के व्यापार युद्ध और कनाडा को अपने साथ मिलाने की उनकी धमकियों की रिपोर्ट के कारण सिएटल सम्मेलन में भाग नहीं लेना चाहते हैं। उनका कहना था कि अगर हम सिएटल में ही सम्मेलन को आयोजित करते तो इसमें काफ़ी कम लोग आते। इस बीच आयोजन स्थल का अनुबंध तोड़ना लागत प्रतिबंधक होगा, इसलिए आयोजकों ने एक क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालते हुए वैंकूवर में एक अतिरिक्त छोटा सा सम्मेलन आयोजित किया है। कुछ कार्यक्रम दोनों स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़े रहेंगे। क्यूबेक के कई छात्रों ने सेलफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले से असंतुष्टि के कारण किया है। 30 अप्रैल को प्रांत के शिक्षा मंत्री बर्नार्ड ड्रैनविल ने क्यूबेक के स्कूलों में सभ्यता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से अपने इस कदम की घोषणा की थी। प्रांत ने पहले ही कक्षाओं में सेलफोन पर प्रतिबंध लगा दिया है, जो पिछले साल से ही लागू है। सेलफोन पर पूर्ण प्रतिबंध अगले साल स्कूल वर्ष से प्राथमिक और हाई स्कूल्स में लागू होगा, चाहे वे निजी हों या सार्वजनिक, और ये स्कूल के दिन की शुरुआत से लेकर अंत तक लागू रहेगा। लेकिन कई लोग नए नियम को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इस बीच कुछ छात्रों ने शुक्रवार को हड़ताल की, इसकी वजह से उनकी एक दिन की क्लास छूट गई, और कुछ लोग अपने स्कूल के सामने छोटे विरोध प्रदर्शन में भी हिस्सा लेते हुए नजर आए। अमेरिकी और चीनी अधिकारियों ने आज कहा कि वे अपने हाल के अधिकांश टैरिफ को वापस लेने और अपने व्यापार युद्ध में 90 दिवसीय सीज फायर की घोषणा करने के लिए एक समझौते पर पहुंच गए हैं, ताकि अपने व्यापार विवादों को हल करने के लिए और अधिक बातचीत करने की अनुमति मिल सके। इस खबर के बाद से शेयर बाजारों में तेजी से उछाल आया, क्योंकि दुनिया की दो प्रमुख आर्थिक शक्तियों ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने वाले टकराव से एक कदम पीछे अपने आप को हटा लिया है। इकोनॉमिस्ट ने चेतावनी दी थी कि टैरिफ अभी भी पहले की तुलना में अधिक बने हुए हैं और भविष्य की वार्ता का परिणाम अनिश्चित है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने कहा कि अमेरिकी चीन वस्तुओं पर 145% टैरिफ दर को 115% अंकों से घटाकर 30% करने पर सहमत हो गया है, जबकि चीन अमेरिकी वस्तुओं पर अपनी दर को उसी राशि से घटाकर 10% करने पर सहमत हो गया है। इस समझौते ने कुल नाकाबंदी को टाल दिया है और एक समाचार सम्मेलन में इस टैरिफ कटौती की घोषणा की गई। दोनों अधिकारियों ने पॉजिटिव स्वर अपनाया और उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने व्यापार मुद्दों पर चर्चा जारी करने के लिए परामर्श स्थापित किया है। दो दिनों की वार्ता के बाद ये कदम सामने आया है, जहां उच्च हाई टैरिफ स्तरों के कारण दोनों पक्षों के माल की पूरी तरह से निकासी होने के कोई परिणाम नहीं मिल रहे थे। वीकेंड के दोनों दिनों में कम से कम 17वीं सदी के इस विला में वे मिले, जो जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र दिवस में स्विस राजदूत के आधिकारिक निवास के रूप में कार्य करता है। इस बीच आपको ये बता दें कि कभी कभी प्रतिनिधिमंडल के नेता अपने कर्मचारियों से अलग होने के बाद इस बहुप्रतीक्षित सौदे पर पहुंचने के लिए और व्यक्तिगत संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने में भी काम करते रहे हैं। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर 91% टैरिफ को रद्द करने और 90 दिनों के लिए 24% टैरिफ को निलंबित करने पर सहमत हुए हैं। कुछ अन्य समाचारों में, स्टैटिस्टिक्स कैनेडा का कहना है कि अप्रैल के प्रारंभिक आंकड़े कैनेडा के निवासियों द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में वापसी यात्राओं में तेज गिरावट की ओर इशारा कर रहे हैं। इसका कहना है कि अप्रैल में संयुक्त राज्य अमेरिका से ऑटोमोबाइल द्वारा वापस लौटने वाले कैनेडियंस की संख्या में लगातार चौथे महीने साल दर साल गिरावट आ रही है, क्योंकि ये 35.2% से घटकर 1.2 मिलियन हो गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कायम होता दिख रहा है और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर शुरुआती उल्लंघन का आरोप लगाया था, क्योंकि दशकों में परमाणु हथियार संपन्न पड़ोसियों के बीच लड़ाई के बाद सबसे बुरे दौर के बाद असहज शांति कायम हो गई है। भारतीय सेना ने रविवार को पाकिस्तान को सहमत सीज फायर के उल्लंघन के बारे में एक हॉटलाइन मैसेज भेजा, जिसमें उसे सूचित किया गया कि अगर दोबारा ऐसा हुआ तो नई दिल्ली जवाब देने की मंशा रखती है। इस बीच भारत के DGMO ने कहा कि शनिवार रात को शुरुआती उल्लंघन के लिए वे दोनों एक दूसरे के ऊपर दोषी ठहराए जाने के बाद ये नाजुक सीज फायर अब कायम होता दिख रहा है। शनिवार को घोषित किए गए सीज फायर ने कई दिनों तक दोनों भारत और पाकिस्तान की साझा सीमा पर मिसाइलों और ड्रोनों को दागे जाने पर रोक लगा दी, जिसमें लगभग अब तक 70 लोग मारे जा रहे थे। इस बीच जब ये संघर्ष पूर्ण पैमाने पर आगे बढ़ रहा था, तब कूटनीति और संयुक्त राज्य अमेरिका के दबाव ने युद्ध विराम को समझौते को सुरक्षित करने में मदद की। इसके लागू होने के कुछ ही घंटों के भीतर भारत प्रशासित कश्मीर में विस्फोट हुए, जो पिछले सप्ताह लड़ाई का केंद्र रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को सीजफायर की घोषणा करते हुए कहा कि वॉशिंगटन की मध्यस्थता और बातचीत के बाद ये समझौता हुआ है। इस बीच जहां इस्लामाबाद ने सीजफायर के लिए अमेरिका को धन्यवाद दिया, पर भारत के साथ कश्मीर विवाद पर मध्यस्थता करने पर ट्रंप के प्रस्ताव का नई दिल्ली ने कोई स्वागत नहीं किया और इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान के साथ विवादों को दोनों देशों को सीधे हल किया जाना चाहिए और किसी थर्ड पार्टी मीडिएशन को वे अस्वीकार करते हैं। पाकिस्तान और भारत के लोग दशकों से परमाणु सशस्त्र राष्ट्रों के बीच गंभीर लड़ाई के बाद हालांकि अब सीज फायर का जश्न मना रहे हैं और तनाव के बावजूद सीमावर्ती क्षेत्रों में जीवन धीरे धीरे सामान्य होता जा रहा है। ये थे अब तक के समाचार। ज़्यादा समाचारों के लिए जुड़े रहें रेडियो हम सफ़र से।